सुबह लगभग 7 बजे थे। विश्वनाथ गरी के मोड़ पर बने मकान में, जिसके बाहर मिश्रा निवास लिखा था, एक आवाज गूंज रही थी। ईशान कब तक छत पर खड़ा होकर अकेले दूर से ही घाट को, गंगा मैया को निहारता रहेगा? शादी करके किसी ऐसी को घर लिया जिसके साथ घाट पर जाकर वहां की खूबसूरती और सुबह के इस मनोरम दृश्य को करीब से देख सके। ये आवाज ईशान की बड़ी बहन रजनी की थी। ईशान उस वक्त रोज की तरह अपने घर की छत पर खड़ा खामोशी से घाट और गंगा मैया को देख रहा था। उसकी घर की छत से घाट दिखता था और ईशान की सुबह रोज ऐसे ही होती थी। घाट पर कई श्रद्धालु नजर आ रहे थे। आकाश में सूरज अपनी लालिमा फैलाने लगा था और उस लालिमा से गंगा नदी का पानी भी रंग गया था। आकाश में मौजूद सूरज काक्ष पानी में कुछ इस प्रकार उभर आया था, मानो जैसे एक सूरज आकाश को अपने प्रकाश से रोशन कर रहा था तो दूसरा सूरज गंगा मैया की तह में बैठा आराम फरमा रहा था। उसका प्रतिबिंब उन लहरों पर बन और बिगड़ रहा था। उसकी सुनहरी किरणों से गंगा मैया का निर्मल जल सूरज सा दमक उठा था। ठंडी हवाओं के साथ गंगा नदी की लहरें भी बलखा रही थी। बड़ा ही मनोरम दृश्य था वो, जब आकाश से धरती तक सब एक रंग से सराबोर था और दूर से देखने पर गंगा नदी के विशाल रूप का आकाश से संगम का नजारा देखने को मिलता था। गंगा की लहरों को देखकर ईशान को हमेशा से सुकून मिलता था और जैसे हर बार पीछे हटने के बाद वो लहरें पहले से ज्यादा वेग के साथ आगे बढ़ती थीं, ताकि घाट की सीढ़ियों को पार करके अपने प्रियतम विश्वनाथ के चरण पखार सकें। वैसे ही जिंदगी की हर मुश्किल से लड़कर ईशान आगे बढ़ता था, ताकि अपने पापा का सपना साकार कर सके। ईशान जो अधरों पर मुस्कान सजाए गंगा नदी और घाट को देख रहा था, रजनी की आवाज सुनकर उसकी मुस्कान कुछ गहरी हो गई। उसने पलट कर देखा तो रजनी पीछे ही खड़ी थी। दीदी, आप रोज यही बात कह कहकर थकते नहीं हैं? ईशान की बात सुनकर रजनी ने मुंह बनाते हुए कहा, तू सुनता ही नहीं है मेरी, कर लेना शादी, इस घर में कोई आ जाएगी तेरा ख्याल रखने वाली तो मैं भी अपने बारे में सोच सकूंगी। तू ही बता, और कितना इंतजार करवाऊं मैं अभिषेक और उसके घर वालों को? तो क्यों करवा रही हैं आप जीजा जी से इंतजार? मैंने तो कहा है ना आपसे कि कर लीजिए शादी, मैं कोई बच्चा तो नहीं हूं जो मेरे वजह से आप अपनी जिंदगी खराब करें। इतना बड़ा हो गया हूं कि अपना ध्यान खुद से रख सकता हूं, फिर किस बात की चिंता है आपको? कहो तो आज ही जाकर शादी की तारीख निकलवाऊं। ईशान ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, रजनी ने तुरंत ही एतराज जता दिया, नहीं, पहले तेरी शादी होगी फिर मेरी शादी होगी, अब तो तू बस इतना बता कि क्यों शादी से इतना भागता है तू? उनका ये सवाल सुनकर ईशान एक पल को खामोश रह गया। उसके चेहरे पर विषाद के भाव उभर आए और आंखों में अनकहा सा दर्द और मौन शिकायत झलकने लगी, जिसे शायद वो कभी जाहिर नहीं कर सका था। फिर उसने ठंडी आह भरी और हमेशा की तरह अपने मनोभावों को अपने मन में छुपाते हुए बिना किसी भाव के बोला, आप वजह से बखूबी वाकिफ हैं दीदी, फिर भी अनजान बनती हैं। हर लड़की माँ जैसी नहीं होती यीशु। रजनी के लबों से धीमे से स्वर निकले, चेहरा दर्द और नाराजगी से भर उठा। उसकी बात सुनकर ईशान ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, हर लड़की माँ जैसी नहीं होती, इस बात से मैं भी पूरी तरह सहमत हूँ। पर क्या गारंटी है कि जो लड़की मेरी जिंदगी में आएगी वो माँ जैसी महत्वाकांक्षी नहीं होगी और जितना मिलेगा उसी में खुश रहेगी? क्या गारंटी है कि जो पापा के साथ हुआ वो मेरे साथ नहीं होगा? मैं भी तो उनके ही तरह मामूली सा हलवाई हूँ, ज्यादा कमाई नहीं मेरी। मैं अपनी लाइफ पार्टनर को ऐशो आराम की जिंदगी नहीं दे सकता, उसकी जरूरत को पूरा कर सकता हूँ, पर उसके बड़े बड़े शौक पूरा करने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। अब आप बताइए कि कौन सी लड़की होगी जो जितना मिलेगा उसी में खुश रहेगी, संतुष्ट रहेगी? कौन सी लड़की ऐसे लड़के से शादी करेगी उसके साथ खुश रहेगी? फिर मेरे पास इन झंझटों में फंसने और शादी के बाद लड़ाई झगड़े में उलझने के लिए वक्त नहीं है। मुझे पापा का सपना पूरा करना है, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा। तो आप मेरे लिए जीजा जी को और इंतजार मत करवाइए और मेरी चिंता छोड़कर उनके साथ घर बसा लीजिए। ईशान ने अपनी बात पूरी की और गहरी सांस छोड़ी। रजनी ने खामोशी से उसकी बात सुनी और गंभीरता से बोली, तूने अपना फैसला सुना दिया तो मेरा फैसला भी सुन ले। जब तक तू शादी नहीं कर लेता और मैं तुझे तेरी वाइफ के साथ तेरी लाइफ में सेटल और खुश नहीं देख लेती, मैं भी शादी नहीं करूंगी। और आज जो तूने हलवाई वाली बात कही उसका जवाब भी सुनता जा। बहुत अंतर है तेरे और पापा में। हलवाई बनना उनकी मजबूरी थी और तेरी इच्छा, वरना तू इतना पढ़ा लिखा है कि कहीं भी अच्छी खासी जॉब मिल सकती है तुझे। और भूल मत, तुझे जॉब मिली थी, तूने खुद इतने अच्छे मौके को ठुकराया था। तेरे पास इतना दिमाग है कि तू इस मिठाई की मामूली सी दुकान से इतना कमा सकता है कि अपनी लाइफ पार्टनर को बेहतर जिंदगी दे सके। इसलिए अगर चाहता है कि मैं शादी कर लूं तो अपनी बेकार की जिद छोड़कर शादी कर ले, वरना तो फिर तू सारी जिंदगी अकेला रही हो और तेरे साथ साथ मैं भी सारी उम्र तन्हा काट लूंगी। रजनी ने अपनी बात पूरी की और गुस्से में वहां से चली गई। ईशान कुछ पल परेशान वहां खड़ा रहा, फिर पलटकर घाट की तरफ देखा तो हवा का रुख बदल चुका था और गंगा की धाराएं शायद उससे रुष्ट होकर विपरीत दिशा में बहने लगी थी। नीचे आंगन में चहल पहल भी शुरू हो चुकी थी। मिश्रा निवास के काले रंग के गेट से अंदर जाते हुए सामने ही बड़ा सा आंगन था। एक ओर बैठक थी तो दूसरी ओर खाने के लिए साधारण डाइनिंग टेबल लगा हुआ था, जिसके इर्द गिर्द लकड़ी की 10 कुर्सियां लगी हुई थीं। ईशान और रजनी के अलावा यहाँ उनके चाचा और बड़े पापा का परिवार भी रहता था। ईशान के पापा धीरज जी भाई बीच के थे। उनके बड़े भाई थे रामविलास मिश्रा, अर्धांगिनी श्रीमती कौशल्या मिश्रा। दो बच्चे, बेटा जयधर जिसकी शादी हो चुकी है, दिल्ली में नौकरी करता है वो, और अपनी पत्नी सरिता और 3 साल के बेटे कुणाल के साथ वहीं रहता है। तेज त्योहार में भी मुश्किल ही आता है। रामविलास जी के पहले सरकारी नौकरी थी, अब रिटायर हो चुके हैं तो पेंशन और बेटे के भेजे पैसे से मियां बीबी का गुजारा होता है। साथ ही वो पास की दुकान पर काम भी करते हैं, जिससे उनका वक्त गुजरता है। उनकी एक बेटी भी है जया, जिनकी शादी कुछ साल पहले अमरेंद्र जी से हुई थी। ससुराल बनारस में स्थित लंका में है। हाँ जी, लंका, पर श्रीलंका नहीं, ये बनारस में मौजूद है, जहां BHU बनारस और विश्व की सुप्रसिद्ध बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्थित है। लंका, जहां के चाट पानीपुरी पूरे बनारस में फेमस है। अब चलते हैं धीरज जी के छोटे भाई की तरफ, सुजीत मिश्रा, उनकी अर्थांगिनी महिमा जी। सुजीत जी की अपनी साड़ियों की दुकान है जो बनारस में काफी प्रसिद्ध है। उनकी जुड़वा बेटियां हैं शुभ्रा और शुभिका, दोनों तसली में पढ़ रही हैं। धीरज जी की अपनी मिठाइयों की दुकान थी। कुछ साल पहले लंबी बीमारी से जूझते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे और उसके कुछ वक्त बाद से ईशान ने उनकी मिठाई की दुकान की बागडोर अपने हाथ में संभाल ली थी। उसने अपनी मेहनत से इस घाटे में डूबी दुकान को एक बार फिर पहले के पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया था, पर अभी उनका सफर शुरू ही हुआ था। ये है बनारस का मिश्रा परिवार, बाकी बातें बाद में जानेंगे, फिलहाल वापस कहानी पर चलते हैं। ईशान पहली मंजिल पर बने अपने रूम में चलाया। नीचे 3 कमरे थे जहां बड़े लोग रहते थे और धीरज जी का कमरा बंद किया हुआ था। बाकी बच्चों के कमरे ऊपर की 2 मंजिलों पर बने हुए थे। साधारण सा कमरा था, एक मिडिल क्लास फैमिली में किसी के कमरे में मौजूद होती हैं वे सभी चीजें यहां भी मौजूद थीं। एक पलंग जिसके पीछे की दीवार पर एक फोटो लगी हुई थी, जिसमें धीरज जी, उनके साथ 13 साल का ईशान और 15 साल की रजनी दीदी मौजूद थीं।
पलंग के बाएं ओर कुछ कदमों की दूरी पर बाथरूम बना था, दाएं तरफ टेबल था और साथ में बुकशेल्फ जिस पर कुछ किताबें रखी थीं। उसके बगल में ड्रेसिंग टेबल था और फिर लगी थी एक लोहे की अलमारी। कमरे में 2 बल्ब लगे थे, जिनमें से एक अभी जल रहा था, एक पंखा और एक कूलर भी था, जिसे देखकर लग नहीं रहा था कि उसे कभी चलाया भी जाता है। कमरा साफ सुथरा और व्यवस्थित था, ज्यादा बड़ा नहीं था पर सामान सलीके से अपनी जगह पर रखा था, इसलिए काफी अच्छा लग रहा था। ईशान ने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और नहाने चला गया। कुछ देर बाद नहाकर बाहर आया और ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ा हो गया। हल्का सांवला रंग, तीखे नयन नक्श, माथे पर लहराते गीले बाल, गहरी भूरी आंखें, गले में महादेव का लॉकेट, दाएं हाथ में रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, सादे कपड़ों में भी काफी आकर्षक लग रहा था। फिल्मों का हीरो नहीं था, एक सीधा साधा सा लड़का था, पर चेहरे पर आत्मविश्वास का तेज और आंखों में कुछ कर गुजरने का जुनून नजर आ रहा था, जो उसे उसकी उम्र के और लड़कों से जुदा कर रहा था। ईशान जल्दी से तैयार हुआ और वहीं रूम में रखी शिवजी की प्रतिमा के आगे हाथ जोड़ने के बाद नीचे पहुंचा। नीचे आंगन में पहुंचते ही किचन की तरफ नजरें घुमाते हुए उसने तेज आवाज में रजनी को पुकारा, दीदी खाना मिलेगा या ऐसे ही चला जाऊं? अगले ही पल किचन से रजनी एक हाथ में प्लेट और दूसरे में लंच बॉक्स लेकर बाहर आई। इतने में ईशान ने वहीं आंगन में जमीन पर आसन बिछा लिया और उस पर बैठ गया। रजनी ने प्लेट उसके सामने रख दी और टिफिन साइड में रखकर वापस किचन में चली गई और कुछ पल बाद वो पानी लेकर आई और उसके पास बैठते हुए बोली, ईशु तू दिल्ली जाने का कह रहा था, कब जाना है तुझे दिल्ली? 2 दिन बाद जाना है, पर आप पूछ रही हैं? यूं ही पूछ लिया, तू नहीं रहेगा तो घर किसके लिए आऊंगी, तो चौकी में ही रुक जाऊंगी। रजनी की बात सुनकर ईशान के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। कहने को इतने लोग थे इस घर में, पर फिर भी वो दोनों भाई बहन एक दूसरे का सहारा थे। उनकी माँ जब घर छोड़कर भागी थी, तभी से उनकी वजह से समाज में हुई बदनामी के कारण बड़े पापा और चाचा जी ने धीरज जी और उनके परिवार से सभी रिश्ते तोड़ दिए थे। घर में रहते हुए उनका बहिष्कार कर दिया गया था। बाहर वालों के साथ धीरज जी के खुद के परिवार में उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया था कि खुद की पत्नी को संभाल कर नहीं रख सके, उनके कारण उनके घर परिवार खानदान कितनी बदनामी हुई। दोनों आदमी ने उनसे पूरी तरह से बातचीत बंद कर दी थी, जबकि कौशल्या जी और महिमा जी आदत के अनुसार पहले धीरज जी फिर उनके बच्चों को टोकाटाकी करती ही रहती थीं। महिमा जी छोटी थी तो सामने से कम ही बोलती थी, पर कौशल्या जी को भड़काने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। उनके सहारे ही अपनी बात कह दिया करती थी। कौशल्या जी भी एक मौका नहीं छोड़ती थी धीरज जी और उनके परिवार को नीचा दिखाने का। बड़ों के बीच आए मनमुटाव और आपसी बैरभाव बच्चों तक भी पहुंच गए थे, पर शुभ्रा और शुभिका अभी तक इससे अछूती थीं। वे ईशान को अपना बड़ा भाई तो रजनी को अपनी बड़ी बहन मानती थीं और उनका आदर सम्मान भी करती थीं। रजनी की बात सुनकर ईशान कुछ पल शून्य भाव से उसे तकता रहा, फिर गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, थाने में क्यों रखेंगी दीदी, अखिलेश काका के घर चली जाइएगा। अभिषेक भी कह रहे थे, देखती हूँ, चल तू खाना खा, फिर मुझे भी तैयार होकर थाने के लिए निकलना है। ईशान ने सिर हिला दिया और खाना खाने लगा। बाकी सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, पर किसी को इन दोनों से जैसे कोई मतलब ही नहीं था। ईशान खाना खाकर हाथ धोकर उठा तो रजनी खाली प्लेट किचन में लेकर चली गई। बर्तन धोकर वो खुद अपने रूम में चली गई। ईशान अपना लंच लेकर बाहर पहुंचा और जैसे ही अपनी बाइक स्टार्ट करने लगा, पीछे से शुभ्रा और शुभिका ने आकर उसकी बाइक को पकड़ लिया और एक साथ ही बोली, भैया आप हमें छोड़कर ही चले जा रहे हैं। आवाज सुनकर ईशान अपने ख्यालों से बाहर आया। रोज तो वो शुभ्रा और शुभिका को स्कूल छोड़कर अपने काम के लिए जाता था, पर आज रजनी की बातों में ऐसा खोया कि उसको इस बात का ध्यान ही नहीं रहा था। उनकी आवाज़ सुनकर ईशान ने पलटकर पीछे देखा तो उसकी दोनों बहनें गुब्बारे जैसा मुंह फुलाए उसको ही देख रही थीं। इस घर में रजनी के बाद यही दोनों थीं जिनसे ईशान बहुत प्यार करता था। उनकी मासूम सी शक्ल देखकर ईशान ने मुस्कुराकर कहा, सॉरी बच्चे, आज ध्यान नहीं था, आकर बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगी तुम्हें स्कूल। इस बार आपके सॉरी पर आपको माफ़ कर दे रहे हैं, पर अगर दोबारा आप हमको भूले तो हम नाराज़ हो जाएंगे आपसे और अगली बार रक्षाबंधन पर आपको राखी नहीं बांधेंगे। शुभ्रा की धमकी पर शुभिका ने भी सहमति जताई। अपनी बहनों की इस खतरनाक धमकी को सुनकर ईशान एक बार फिर मुस्कुरा दिया, ठीक है आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, चलो अब जल्दी से बैठो वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगे और फिर मास्टर जी की छड़ी खानी पड़ेगी। ये सुनते ही दोनों झट से ईशान के पीछे बैठ गईं। ईशान ने बाइक स्टार्ट की और तीनों वहां से निकल गए। ईशान ने पहले दोनों को स्कूल छोड़ा, फिर विश्वनाथ मंदिर की तरफ निकल गया। उसकी मिठाइयों की दुकान काशी मिष्ठान भंडार थी। दुकान अभी ज्यादा बड़ी नहीं थी पर फेमस थी। ईशान ने ये काम धीरज जी से सीखा था। इसी दुकान के बदौलत धीरज जी ने अपने दोनों बच्चों को पाला था और बचपन से ईशान उन्हें काम करते देखकर उनकी मदद करता था और धीरे धीरे उसने उनसे सब सीख लिया। अपनों के तिरस्कार और लोगों के तानों के कारण धीरज जी कम उम्र में अनेकों रोगों से ग्रसित हो गए थे और अंत में उन्होंने इस कष्ट भरी जिंदगी से नाता तोड़ दिया था। उनका सपना था काशी मिष्ठान भंडार को बढ़ाना, जो अभी ईशान की आंखों में सजा था। ईशान ने दो लड़के रखे हुए थे काम पर। दुकान जाकर पहले उसने महादेव की मूर्ति के आगे दीप प्रज्वलित किया। दुकान में धूप अगरबत्ती जलाई, वहां एक तरफ लगे धीरज जी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़ने के बाद काम में लग गया। दूसरी तरफ उसके जाने के कुछ देर बाद रजनी भी तैयार होकर चौकी के लिए निकल गई। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि रजनी इंस्पेक्टर है और अपने भाई को भेजने के बाद अपनी ड्यूटी पर निकल गई।